हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। आप हैं अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना के साथ और अभी स्टूडियो में मेरे साथ हैं एक बहुत ही एमिनेंट गेस्ट। जी हाँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर निखिल सेठ, एचओडी आई डिपार्टमेंट, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं हमारे रेडियो मानवरचना के स्टूडियो में।
थैंक यू।
चलिए डॉक्टर निखिल से जानते हैं क्योंकि ये एक एचओडी हैं आई डिपार्टमेंट के। तो भाई, आंखें सबसे अनमोल चीज हैं और इस अनमोल चीजों का ख्याल कैसे रखा जाए, सबसे पहले तो इनसे यही जानते हैं।
थैंक यू भावना, बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉर्मल केसेस में जी, हम ये एडवाइस करते हैं जब बच्चा पैदा हो तब जरूर एक बार पीडियाट्रिशियन आईज को चेक करें, क्योंकि कई डिसऑर्डर्स पैदा होने पे पकड़े जा सकते हैं जैसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट। दूसरा, एक साल के बच्चे होने पे जब पीडियाट्रिशियन के पास बच्चा जाता है तब भी एक बार स्क्रीन होता है बच्चा
जी।
कुछ ट्यूमर्स बच्चों के इस स्टेज पे हम जल्दी पकड़ सकते हैं
जी।
देन स्कूलिंग, व्हेन द किड स्टार्ट स्कूल, जैसे 3 से 4 साल की एज में आमतौर पे नॉर्मल जो नंबर है उस एज में आने स्टार्ट होते हैं। दिस इज द राइट टाइम जहाँ हम इन बीमारियों को पहले से कैच कर सकते हैं
जी।
अगर इसके बावजूद बच्चे को नंबर नहीं है, देन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल 3 से 5 साल में एक रूटीन फॉलो, जब तक पेशेंट 40 साल का नहीं होता, आफ्टर 40 इयर्स लेट इट बी एवरी 2 इयर्स, क्योंकि उसके बाद रीडिंग का नंबर स्टार्ट हो जाता है
जी। जी डॉक्टर निखिल, आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि हमारे इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जाएं, या चाहे फिर वो आंखों का हो, हमारे हार्ट का हो, या फिर किसी और जगह का हो। तो आप मुझे ये बताइए कि आंखों की केयर के लिए, क्योंकि इसे कहा जाता है ये सबसे अनमोल चीज है, इररिपेयरेबल है और साथ के साथ कभी आपको वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक इंसान को कैसे पता लगे कि उसकी आंखें वीक हैं या वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही हैं।
सबसे पहले 2 चीजें इम्पोर्टेंट हैं
जी।
कभी भी अगर इवनिंग में या आफ्टरनून में हेडेक्स होने लग जाएं
जी,
आई रेड हो
जी, जी,
आंखों में थकावट हो
जी,
अगर छोटा बच्चा है तो वो टीवी पास से लगातार देखे मना करने के बावजूद
जी,
स्कूल से आने के बाद हेडेक बताए, ये वो सिम्टम्स हैं जहाँ पे आप गेस करें कि यहाँ आंख की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई एंड यू शुड कंसल्ट योर आई सर्जन। या फिर जो 40 से ऊपर है जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, मोबाइल ना पढ़ पाए उसमें नंबर्स, वहाँ पे उन ये हिंट है कि उनको प्रॉब्लम शुरू हो रही है।
क्योंकि जनरली शायद मुझे लगता है हमारा ये मानना है जब तक हमें आंखों से धुंधला ना दिखने लग जाए तब तक हम ये समझते हैं कि हमारी आंखें बिल्कुल ठीक काम कर रही
हैं। स्टार्टिंग में एकदम से धुंधला कुछ भी नहीं होता
जी,
शुरू में वीकनेस ही आएगी, शुरू में सिर्फ थकावट ही आएगी, यही वो समय है अगर हम पकड़ लेंगे बीमारी तो जल्दी ठीक कर देंगे। तो बेस्ट इज व्हेनेवर यू स्टार्ट हैविंग सिम्टम्स प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट आई सर्जन।
चलिए डॉक्टर निखिल, एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि हमें ऐसे कैसे पता लगे कि हमारे कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपना आई एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली करवाते रहें।
वो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं
जी,
जिनका कंप्यूटर्स पे बहुत ज्यादा काम हो
जी,
जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स
बिल्कुल,
वो पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है, थायराइड डिसऑर्डर का हिस्ट्री है
जी,
ये वो पेशेंट्स हैं इनको रेगुलर आई एग्जामिनेशन करवाना जरूरी होता है। और आजकल लेटेस्ट रिकमेंडेशंस भी हैं, फिजिशियंस भी एडवाइस करते हैं वंस अ ईयर एवरी डायबिटिक शुड हैव अ आई एग्जामिनेशन
जी। चलिए, सबसे ज्यादा आजकल जो अगर हमारी आंखें खराब होती हैं वो होती हैं कंप्यूटर के कारण।
Exactly.
अगर आप देखेंगे कि हमारा इतना एक्सपोजर है कंप्यूटर पे कि पूरा पूरा दिन हम स्क्रीन के आगे बैठकर काम करते हैं, और सबसे माना जाता है कि इसी के कारण आंखें खराब भी हो जाती हैं।
राइट right.
तो आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एग्जैक्टली होता क्या है।
सी, नॉर्मली एक कॉमन मिथ है कि हम कंप्यूटर्स बहुत काम करते हैं कंप्यूटर्स पे या टीवी बहुत देखते हैं इसलिए हमारी आंखें खराब हो गई।
जी जी,
एक्चुअली ऐसा है नहीं। कोई भी कंप्यूटर, चाहे वो कलर्ड हो चाहे वो मोनोविजन हो, कोई भी टीवी, कभी कोई आंखें कमजोर नहीं कर सकता, उसकी कोई हार्मफुल रेज उसमें से नहीं निकलती। प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये है हम हर चीज अगर एक्सेस में करते हैं
जी,
तो हम कुछ बेसिक चीजें भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या कंप्यूटर पे जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो नॉर्मली ब्लिंक नहीं करते
जी।
हमारी आई को हर मिनट 16 से 18 बार ब्लिंक करना चाहिए
जी। जी,
यहाँ पे जो लोग कंप्यूटर्स पे ज्यादा काम करते हैं व्हाट दे डू इज उनका ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस हो जाता है
जी, जी,
जिसकी वजह से टियर फिल्म इवेपोरेट होती है और वो एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राइनेस का वजह बन जाती है
जी, जी।
वही एक लेवल के बाद आंख में रेडनेस, आंख में थकावट, आंख का पेन होना, जिसे आजकल हम ई पेन या इलेक्ट्रॉनिक पेन भी बोलने लग गए।
जी जी।
नॉर्मली दिस इज नॉट अ कंप्यूटर जो नुकसान दे रहा है, ये हमारी आदतें हैं जो हमें नुकसान दे रही हैं। तो आई वुड सजेस्ट ऑल दोज पर्सन जो कंप्यूटर्स पे बहुत काम करते हैं कि आप बेशक करिए काम, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखिए कि आपसे 2 से 3 फुट की दूरी पे कंप्यूटर हो
जी।
एक मिनट में 16 से 18 बार इंटेंशनली ब्लिंक करें जब आप कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं
जी।
हर एक घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए कंप्यूटर से, उससे आपकी आई मसल्स टोन अप हो जाएंगी
जी।
एक बार जगह रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं। लुब्रिकेशन कुछ नहीं है, नकली आंसू हैं
जी।
जिनका ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है उनको हम सप्लीमेंट करते हैं लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से। दीज आर द फ्यू प्रिकॉशन जो ये पेशेंट रेगुलर लें तो आई एम श्योर उन्हें कोई कंप्यूटर से एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी
जी। हाँ, तो देखिए आज के टाइम में हम ये मिथ ही कहेंगे कि हम ये मानते हैं कंप्यूटर या टीवी ज़्यादा देखने से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया कि हमारी कुछ आदतें हैं जिसके कारण हम अपनी आंखों को कमज़ोर कर लेते हैं। एक और चीज़ है जिसके बारे में बड़ी कॉमन सी मिथ है, वो है कंजंक्टिवाइटिस।
राइट, वेरी राइट। सी, कंजंक्टिवाइटिस इज समथिंग जो एक समर्स और रेन के कॉम्बिनेशन से आता है
जी।
मोस्ट कॉमन सीजन जिसे हम बोलते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस, आंख आना जिसको हम
नॉर्मली
बोलते हैं, आई फ्लू भी कहा जाता है। एग्जैक्टली। सी, सिम्टम वाइज जब भी आपकी आंख लाल हो, आंख से आंसू निकले, आंख से डिस्चार्ज निकलने लग जाए तो उसे आई फ्लू बोलते हैं
जी।
इसका देखिए मेन वजह है ये जो सीजन होता है समर विद द रेन्स, ये वायरस को मल्टीप्लाई करता है।
बिल्कुल।
ये कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू वायरल कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली होता है
जी।
नाउ देयर इज अ मिथ कि अगर मुझे कंजंक्टिवाइटिस है और आंख से आंख मिलाई तो उसे भी हो जाएगा
जी, जी।
अगर ऐसा होता शायद हम आई सर्जन आज ब्लाइंड हो चुके होते। नॉर्मली ऐसा नहीं है। बेसिकली ये हमारा फिजिकल स्प्रेड है। मान लीजिए मुझे कंजंक्टिवाइटिस है, मैंने अब फिंगर्स को आंखों पे लगाया आंसू साफ करने के लिए, मेरी फिंगर्स कंटेमिनेट हो गई। मैंने किसी से हाथ मिलाया, उसने फिर अपनी आंखें रब की, अगले दिन उसे कंजंक्टिवाइटिस हो गया। कंजंक्टिवाइटिस होता है फिजिकल स्प्रेड से। इसलिए बेस्ट वे टू प्रिवेंट कंजंक्टिवाइटिस इज कि जिसको कंजंक्टिवाइटिस है अगर वो बच्चा है तो वो स्कूल ना जाए, ताकि उसके स्कूल के जो उसके बैचमेट्स हैं उन्हें ना हो। ऑफिस अवॉइड करिए, कंप्यूटर पे हैं तो कंप्यूटर से जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसको अवॉइड करिए ताकि वायरस स्प्रेड ना हो, क्योंकि जब कोई दूसरा उसी पे करेगा काम उसे हो जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंटली कुछ लोग लोकल प्रिपरेशन देते हैं, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं
जी।
नेवर यूज स्टेरॉइड्स इन कंजंक्टिवाइटिस। आमतौर पे केमिस्ट के पास पेशेंट्स जाते हैं कि आंख दुखने आ गई है, एंड द बेस्ट वे दे डू गिव इज स्टेरॉइड्स, व्हिच इज एब्सोल्यूट नो फॉर द कंजंक्टिवाइटिस। नॉर्मल कंजंक्टिवाइटिस 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो बेस्ट है कि आप हाइजीनिक प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। पिलोस को शेयर ना कीजिए, हैंकीज को शेयर ना कीजिए, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश विद सोप कीजिए। जो लोग ये करेंगे आई एम श्योर उनके घर में और किसी को नहीं होगा
जी। आजकल तो हर चीज इतनी ज्यादा डिस्पोजेबल आ गई है कि आप डिस्पोजेबल हैंकीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिश्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये आगे कहीं स्प्रेड ना हो।
राइट।
वैसे हम इसमें एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की जैसे एक कॉमन मिथ है कि आंखों से आंखें मिलने से जैसे कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, तो क्या कोई ऐसी स्पेशल फूड या डाइट भी है जिससे हम इसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं?
नो, सी, कंजंक्टिवाइटिस इज लाइक एक वायरस, अगर आई के अंदर आ गया है इट इज गोइंग टू स्प्रेड। उसके अपने जो एक साइकिल है वो तो आंखों में जरूर चलेगा
जी, जी।
तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रिवेंट कंजंक्टिवाइटिस, होने से बचा सकते हैं। होने के बाद तो 3 से 5 दिन लेगा ही लेगा। इम्पॉर्टेंट ये है उन 3 से 5 दिन में हम कोई ऐसी दवाई ना डालें जिससे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो जाए
जी।
जो एक इन्फेक्शन का रूप आगे लेके आंखों को खराब कर सकता है।
दैट्स
अ रीजन अगर आपको लगे कंजंक्टिवाइटिस सेटल नहीं हो रहा, कंसल्ट योर आई डॉक्टर। Just to be on the safer side.
डॉक्टर निखिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब किसी को आंखों पर चश्मा चढ़ता है
right.
तो सोचने वाली बात होती है, लोग कहते हैं मेरा नंबर बढ़ गया है, मेरा माइनस में नंबर है, मेरा पॉजिटिव में नंबर है।
What
are these refractive numbers?
See, what we call them as refractive errors. चश्मे के नंबर is called as a refractive error.
जी जी।
एक आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग के पास ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली ये क्वेश्चन होता है दूर का प्लस है या माइनस है। दूर का तो माइनस ही होता है। सी द थिंग इज, आपका जो नंबर दूर का होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है
जी।
और जो रीडिंग का नंबर है वो हमारी एजिंग की वजह से आता है, जो 40 साल के बाद ही आएगा
जी।
वो हमेशा प्लस होता है
जी।
एंड सेकंड थिंग इज, हम इसको एक्चुअली जो टेक्निकली बोलते हैं वो इज मायोपिया। जब हमें माइनस नंबर लगता है जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, देन कम्स हाइपरोपिया जिसमें प्लस नंबर लगता है
जी।
और जो 40 के बाद वाला वी कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया, जो एक्चुअली डिजीज नहीं है, वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, कुदरती प्रोसेस है लेंस के फाइबर्स वीक होने का, जिसमें प्लस नंबर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर दूर का नंबर है तो वो सिर्फ माइनस होगा। एग्जैक्टली सच्चाई तो ये है, दूर का कुछ होता ही नहीं है। जिनको प्लस या माइनस का नंबर लगता है यानी मायोपिया या हाइपरोपिया, वो सभी डिस्टेंसेस के लिए होता है। यानी अगर मुझे लगा है तो मैं पढ़ने में भी यूज़ करूँगा और टीवी देखने के लिए भी यूज़ करूँगा। सो सिर्फ रीडिंग का नंबर 40 के बाद ही आएगा, उससे पहले जो भी नंबर हैं वो सभी डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो दूर वाला कंसेप्ट एक्चुअली गलत है।
जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, और उनसे हम आँखों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो भाई एक और चीज जो आँखों के साथ आती है वो है कैटरैक्ट।
एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी कैटरैक्ट, जिसको हम सफेद मोतिया या मोतिया बिंद भी बोलते हैं, एक तो ये एक बीमारी नहीं है, ये एक एजिंग प्रोसेस है। हमारी आँख के अंदर एक कुदरतन ट्रांसपेरेंट लेंस है जो रोशनी को फोकस करता है रेटिना पे। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये लेंस की ट्रांसपेरेंसी लूज होती जाएगी। जब वो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाएगी तो वो ओपेसिफिकेशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट कई चीजों से बढ़ सकता है। मोस्ट कॉमन रीजन इज एज, जो दैट इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल एंड इट इज अ मोस्ट कॉमन रीजन फॉर कैटरेक्ट। अदर देन द एज, अगर पेशेंट डायबिटिक है, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, तो ऐसे पेशेंट का लेंस न्यूट्रिशन हैम्पर हो जाता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। सो ऐसे पेशेंट को जल्दी कैटरेक्ट होगा।
बिल्कुल।
वो पेशेंट जो धूप में ज्यादा घूमते हैं, जिनका अल्ट्रा वायलेट बी रेज से ज्यादा एक्सपोजर होता है, जैसे फार्मर्स, उन्हें नॉर्मल से जल्दी कैटरेक्ट हो सकता है। वो पेशेंट जिनको एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, उनको जल्दी हो सकता है। अदर देन दिस, अदर रीजंस कैन बी चोट लगने पे कैटरक्ट जल्दी हो सकता है। यानी वो भी कोई भी कंडीशन जिसमें लेंस की न्यूट्रिशन सप्लाई हैम्पर होगी, तो ऐसे केसेस को मोतियाबिंद जल्दी हो सकता है।
और एग्जैक्टली कैटरक्ट का ट्रीटमेंट क्या है?
कैटरक्ट क्योंकि आँख के अंदर लेंस की एक सफेदी की वजह से होता है, तो जब तक ये सफेदी नहीं हटाई जाए तब तक इसको हम ठीक नहीं कर सकते। यानी शीशे बदलने से या चश्मे बदलने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसको सिर्फ सर्जरी से ही रिपेयर किया जा सकता है। आज से कुछ साल पहले इसका जो ट्रीटमेंट था उसमें, आई एम श्योर जो लिसनर सुन रहे होंगे उनमें से बुजुर्ग लोग बोलते होंगे कि जब मोतियाबिंद पक जाए तो कराना।
जी जी।
अब कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। नाउ वी हैव लेटेस्ट फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरीज। इसमें हम बहुत क्लियर बोलते हैं जब मोतियाबिंद कच्चा हो तभी कराइए। वजह सिंपल है, अगर पका होगा तो हमें ट्रेडिशनल आई सर्जरी करना होगा, यानी आंख के अंदर 13-14 मिलीमीटर का कट लगाएंगे, कैटरेक्ट को बाहर निकालेंगे, उसकी जगह रिजिड जो लेंस है उसे डाल के आँख के अंदर हम सूचर्स लगाएंगे, टांके लगाएंगे। नाउ इट्स द लेटेस्ट इरा, इसमें हम लोग लेजर्स यूज करते हैं, इसे हम फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड एनर्जी। इसमें हम तकरीबन 2-3 मिलीमीटर का कट लगाते हैं, लेजर प्रोब को अंदर डालते हैं, उस फेको प्रोब से कैटरेक्ट को पूरा इमल्सिफाई करते हैं, यानी अंदर ही अंदर उसको सुखा देते हैं और चूस लेते हैं तोड़ के, और उसकी जगह हम फोल्डेबल लेंसेज को इम्प्लांट कर देते हैं। फायदे, इमीडिएट रिकवरी ऑफ विजन, हॉस्पिटल में शायद मुश्किल से 1-2 घंटा स्टे, एंड कोई टांके नहीं, सेकेंड डे आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करिए, नो बेड रेस्ट, गो टू योर होम, अगर आप हाउस वाइफ हैं गो टू योर किचन, इफ़ यू आर वर्किंग गो टू योर ऑफिस, एंड यू हैव टू पुट सम ड्रॉप्स, नथिंग एल्स।
डॉक्टर निखिल, आपने कहा कि कैटरेक्ट का जो सर्जरी है वो आजकल बहुत ज्यादा इजी कर दिया है लेजर से।
yes.
लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है, सिंस इट इज जस्ट एन एजिंग प्रोसेस, इससे हम बच भी सकते हैं?
नो एक हद तक नहीं, एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर ने क्लियर किया है कि अबव 90 इयर्स ऑफ एज 98% ऑफ द पेशेंट्स आर गोइंग टू हैव सम डिग्री ऑफ कैटरेक्ट। जैसे समय के साथ बाल सफेद होते हैं, वैसे ही समय के साथ लेंस भी सफेद होता है, जिसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। हम सिर्फ उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेस को, रेस से बच के, फॉर एग्जांपल धूप में बहुत ज़्यादा ना निकलें, शुगर का बहुत टाइटली कंट्रोल रखें, दीज आर द थिंग्स। हमारी डाइट जो है हेल्दी होनी चाहिए, लॉट ऑफ विटामिन, लॉट ऑफ मिनरल्स, बट डजेंट मीन कि इससे कैटरेक्ट नहीं होगा। वी कैन ओनली यू नो स्लो द स्पीड ऑफ कैटरेक्ट अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज है तो, अदरवाइज ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। भावना, यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। हमारे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अभी कैटरक फोर्टनाइट चल रहा है
जी.
इसमें इट इज़ फ्रॉम 1st December टू 15th of December
जी.
बट वी आर डूइंग इज़ हम इसमें कैटरक को स्क्रीन कर रहे हैं जो भी विलिंग पेशेंट्स हैं एंड वी आर अगेन ऑफरिंग देम डिसेंट सेविंग्स ऑफर स्पेशली टू सीनियर सिटीजन एंड ऑल अदर पेशेंट हु आर हैविंग अ कैटरक. तो दोज पेशेंट्स हु वॉन्ट टू अवेल दिस थिंग दे आर मोर देन वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूट.
जी हाँ, तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है या अगर आपको कहीं ना कहीं कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है तो ये सबसे सही टाइम है. आप एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं. अक्सर माएँ बच्चों को कहती हैं आप गाजर खाइए आपकी आंखें बहुत स्वस्थ
रहेंगी.
तो क्या ये एक मिथ है या ये वाकई सच्चाई है?
सी लेटेस्ट जो भी डिटेल्स आ रही हैं उसके अंदर बहुत क्लियर हो चुका है
जी.
विटामिन ए का रोल है, डेफिनेटली मेजर रोल है, लेकिन विटामिन ए डेफिशिएंसी से मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिफ्रेक्टिव एरर जो चश्मे के नंबर हैं वो नहीं आ रहे. आजकल जो देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम रादर देन अ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम. न्यूट्रिशन प्रॉब्लम उस जगह होता है जो बच्चे स्लम्स में हों, जिनके पेट में ज़्यादा इंटेस्टाइन वॉर्म्स हों, कीड़े हों, जो विटामिन ए एब्जॉर्ब ना कर पाए, उन केसेस के अंदर ना सिर्फ चश्मे का नंबर, ओवरऑल आई की हेल्थ ही खराब मिलती है. बट जो आपके क्वेश्चन से कंसर्न पेशेंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दे आर फ्रॉम द गुड फैमिलीज, इनका डाइट ओवरऑल ठीक होता है बट स्टिल दे आर हैविंग अ चश्मे का नंबर. मेन वजह एक्चुअली उनके विटामिन ए नहीं है, मेन वजह उनके जीन्स हैं जिसे हम फ्लोटिंग जीन्स बोलते हैं. यस, आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे वो अवॉइड किया जा सके एक हद तक. जैसे डाइट अच्छी रखिए विटामिन ए में, ऑफकोर्स गाजर का उसमें रोल है, ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, लॉट ऑफ पल्सेस, सीरियल्स, उसमें प्रोटीन्स होते हैं. साथ के साथ आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर पे गेम्स के बहुत एडिक्ट हैं. इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्शन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, और वही एक नंबर पैदा करने का एक वजह भी बन जाता है. दैट्स अ रीज़न आज की एज में जब हम चश्मे के नंबर देते हैं बच्चों को, उसी टाइम पेरेंट्स बोलते हैं हमारी एज में हमें तो नहीं था. उसकी एक वजह यह भी है कि उनकी एज में जो एक्सपोजर था और जो बच्चों को आजकल एक्सपोजर मिल रहा है उसमें बहुत फ़र्क है. तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को एक तो मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर गेम्स से अवॉइड करें एंड टीवी दूर से देखिए पर थोड़ा देखिए.
जी हाँ, इसी बहाने आप और कुछ नहीं तो बाहर जाकर टहल कर आ सकते हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और कोशिश करिए कि सुबह सुबह की जो ग्रीनरी है अगर वो आपको देखने को मिले तो मुझे लगता है आंखों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है. धन्यवाद कहना चाहेंगे डॉक्टर निखिल सेठ का कि वो हमारे रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारियां दी हमारे लिसनर्स को.
थैंक यू भावना.
और दोस्तों आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइफ.